করুণা প্রচুর যে আনিল প্রেম ধন, করুণা প্রচুর প্রেম ধন প্রচুর, হেন প্রভু কোথা গেলা আচার্য ঠাকুর, হেন প্রভু কোথা গেলা আচার্য ঠাকুর, কাহা মোর স্বরূপ রূপ কাহা সনাতন, কাহা দাস রঘুনাথ পতিত পাবন, কাহা দাস রঘুনাথ পতিত পাবন, কাহা মোর ভট্ট যুগ কাহা কবিরাজ, এক কালে কোথা গেলা গোরা নটরাজ, এক কালে কোথা গেলা গোরা নটরাজ, পাশানে কুটিব মাথা অনলে পশিব, পাশানে কুটিব মাথা অনলে পশিব, গৌরাঙ্গ গুণের নিধি কোথা গেলে পাব, গৌরাঙ্গ গুণের নিধি কোথা গেলে পাব, से सब संगीर संगे जे कोइल वेला से संग ना पाया कांदे नरोत्तम दा से संग ना पाया कांदे नरोत्तम दा जय लोकनाथ गोस्वामी जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर जय जय प्रभुपाद 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 जय राधा माधव कुंज विहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी जसोदानंदन ब्रज जन रंजन जसोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तेरा बनचारी जमुना तेरा बनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव राधा माधव राधे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद 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 नितय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नितय गौर हरि जय श्री श्री राधा श्याम सुंदर जीव की, श्री श्री कृष्ण बलराम जीव की, श्री श्री गौर निताय जीव की, शिल प्रभुपाद की, समवेत भक्त वृंद की, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स पदान्तिकं। वन्देहं श्रीगुरो श्रीयुता पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं स्वावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं। श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमोऽयं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणे प्रचारिणे निर्विशेष सुन्नवादे पाश्चात्यदेशतारिणे वंशाकल्पतरुभ्य कृपा सिंधु भजेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नम महाबदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। आज श्रील लोकनाथ गोस्वामी प्रभुर तिरुभाव महामहोत्सव। तिरुभाव शब्द का अर्थ है तिरोहित होना, भाव मतलब भाव। वास्तविक रूप से तिरोहित नहीं होते, सभी समय उसको या स्मरण किया जाता है। तो तिरुभाव आज उनका तिरुभाव महोत्सव, आज श्री लोकनाथ गोस्वामी संबंध में आज हम लोग श्रवण करेंगे। लोकनाथ गोस्वामी जीवन चरित बड़े ही मधुर, श्री चैत आज जो हम ब्रज को देख रहे हैं, पहले ब्रज 500 साल पहले ब्रज ऐसे नहीं था। ब्रज का दो पहचान था, एक जमुना नदी और दूसरा नंबर गिरिराज महाराज, ये दोनों ही था। और कोई नहीं जानते कहाँ बरसाना, कहाँ नंदगांव, कहाँ भंडीरवट, कहाँ गोकुल, किसी को पता नहीं था। तो महाप्रभु का संकल्प था कि ब्रज का पुनः उद्धार करना, ये उनका संकल्प था। तो महाप्रभु आविर्भाव का दो कारण, एक बहिरंगा एक अंतरंगा। बहिरंगा कारण है कि महाप्रभु सन्यास धर्म ग्रहण करेंगे और नाम का वितरण करेंगे, क्योंकि उस समय सन्यासी को ही लोग सम्मान देते थे। महाप्रभु देखे सब लोग मेरे विरोध में बहुत लोग बहुत कुछ कह रहे हैं, इससे उनका नुकसान होगा, पारमार्थिक जीवन नष्ट हो जाएगा। तो इसलिए महाप्रभु जीव कल्याण के लिए आए और उन्होंने संकल्प किया कि मुझे सन्यास लेकर समस्त संसार को उद्धार करना है। अब महाप्रभु वही किए थे, संसार सन्यास लेकर नाम धर्म का प्रचार किए। ये महाप्रभु का मुख्य कारण नहीं है, ये महाप्रभु के बहिरंग कारण। अंतरंग कारण क्या है? श्री चैतन्य महाप्रभु राधा भाव की महिमा जानना चाहते थे, ये राधा रानी भाव किस प्रकार के हैं। और दूसरा नंबर कि ब्रज का पुनः उज्जीवित हो, पुनर्स्थापना हो, कि ब्रज उस समय पूरा लुप्त हो चुका था, ये उनका एक संकल्प था। किंतु संकल्प पूरा कैसे हो, उसके लिए विशेष व्यक्ति की प्रयोजन है। तो महाप्रभु इस बारे में सोच रहे थे, महाप्रभु सोच रहे थे कोई ऐसे व्यक्ति मिले जिसके द्वारा मैं ब्रज का पुनः स्थापना करेंगे। तो उसी समय लोकनाथ गोस्वामी आए महाप्रभु के पास। तो महाप्रभु के पास आए और महाप्रभु उनसे कहेंगे तुम ब्रज के ओर जाओ। ये जो लोकनाथ गोस्वामी, इनका पिता का नाम पद्मनाभ चक्रवर्ती और माता का नाम सीता देवी। पद्मनाभ और माता का नाम सीता देवी। इनका जन्म हुआ 1482 या 1483, कुछ निश्चित ये नहीं दिया, 1482 और 1483 सब ख्रिस्टाब्द में इनका जन्म हुआ। इनका गांव का नाम था तालखड़ी, तालखड़ी गांव में इनका जन्म हुआ। तो पिता पद्मनाभ चक्रवर्ती बड़े ही परम वैष्णव थे, महान भक्त थे, अद्वैत प्रभु के शिष्य थे, उनसे भागवत का अध्ययन किए। कौन? पद्मनाभ चक्रवर्ती। पद्मनाभ चक्रवर्ती फिर तालखड़ी जो ग्राम है, ये बंग पूर्व बंग जहाँ आज बांग्लादेश के नाम से जाने जाते हैं, बांग्लादेश। तो तालखड़ी फिर पुनः तालखड़ी चले गए पद्मनाभ चक्रवर्ती। तो वहां जाते ही उन्होंने एक चतुष्पाठी विद्यालय खोले और उसकी सबको पढ़ाने लगे पद्मनाभ चक्रवर्ती। पद्मनाभ चक्रवर्ती एक संतान प्राप्त के नाम लोकनाथ। लोकनाथ को चाहते थे कि जागतिक शिक्षा नहीं देना है, पारमार्थिक शिक्षा ही शिक्षित करना है, ऐसे शिक्षा में शिक्षा देना है जो पुनः मातृगर्भ में आना ना पड़े। यही पिता माता की इच्छा होती है कि और पुनः किसी माँ के गर्भ में आना ना पड़े। तो उन्होंने सबसे पहले 13 साल तक चतुष्पाठी जो उनके पिता ने स्थापना किए थे उसमें पढ़ाई किए। 14 वर्ष में उनको भेजा कि आप शांतिपुर बा उस समय नवद्वीप में टोल था अद्वैत प्रभु का, कि उसी में जाके अध्ययन करो, नवद्वीप में अध्ययन करो। पद्मनाभ चक्रवर्ती आपने संतान को भेज दिए। शास्त्र में लिखा है कोई अगर संतान को ठीक से उनकी कर्तव्य का नहीं निभा पाएंगे तो उनका पिता माता होना सार्थकता नहीं है। तो इसलिए वैष्णव बनाना, उनके वैष्णव धर्म में दीक्षित करना, ये उनके पिता का सबसे बड़ी इच्छा थी। तो उन्होंने कहाँ भेज दिए, नवद्वीप में अद्वैत आचार्य के टोल में, जहाँ भागवत शिक्षा दिए जाते हैं। तो उस समय श्री अद्वैत आचार्य के टोल में श्रीमन महाप्रभु और गदाधर प्रभु दोनों ही पढ़ने के लिए आते थे। कौन कौन? महाप्रभु और गदाधर प्रभु दोनों आते थे। किसके टोल में? अद्वैत आचार्य के टोल में आते थे। दोनों ही अच्छा से भागवत पढ़ रहे सभी लोग। और लोकनाथ गोस्वामी प्रभुपाद जो प्रभु बहुत अच्छा से अध्ययन कर रहे हैं, श्रीमद् भागवत की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, और महाप्रभु के रूप लावण्य में उनका मन मुग्ध हो गया है। उनका मन स्थिर कर लिया कि ये मेरा इष्ट है, इनके साथ ही मेरे जीवन बिताना है, इनके साथ में मुझे रहना है, ये उन्होंने निर्णय कर लिया। पाठ भी चल रहे और नित्य महाप्रभु का दर्शन प्राप्त कर रहे लोकनाथ गोस्वामी। तो लोकनाथ गोस्वामी भागवत श्रवण करते करते उनका भाव माने महाभाव विभोर हो जाते थे। उनका अपना जो प्रेमावस्था जो लक्षण है वो दिखाई पड़ता था, उत्तम तो भाव विभोर हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत श्रवण के यही फल है। कोई अगर ठीक से श्रीमद् भागवत श्रवण करे तो वो निश्चित भागवत प्राप्ति कर लेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। तो अद्वैत प्रभु लोकनाथ की अवस्था देखकर श्री चैतन्य महाप्रभु के हाथों में समर्पित कर दिया, श्री चैतन्य महाप्रभु के हाथ में समर्पण कर दिया कि तुम इसको अपने पास रखो। और महाप्रभु उस समय अद्वैत को अंगीकार किया, अपना माना। एक्चुअली ये जो लोकनाथ गोस्वामी ये राधा रानी की परिकर है। श्रीमन महाप्रभु तो राधा कृष्ण मिलित तनु है और लोकनाथ गोस्वामी राधा रानी की परिकर है। जैसे शिल रूप गोस्वामी रूप मंजरी के रूप में, सनातन गोस्वामी लवंग मंजरी के रूप में, गोपाल भट्ट गोस्वामी गुण मंजरी के रूप में, गदाधर रघुनाथ भट्ट रस मंजरी के रूप में, रघुनाथ दास रति मंजरी बा तुलसी मंजरी के रूप में, गोपाल भट्ट गुण मंजरी के रूप में, सीजीव गोस्वामी विलास मंजरी के रूप में, और लोकनाथ गोस्वामी मंजूलाले, लोकनाथ गोस्वामी मंजूलाले बा लाले के नाम से जाने जाते थे। नित्य स्वरूप में एक स्वरूप होता है। और ये जो एक्चुअली नित्य परिकर जब राधारानी जब श्रीमन महाप्रभु को समर्पित कर दिए तो अपना माना कि अपना अपना परिकरों में है, तो इसलिए उन्होंने स्वीकार किया। तो इस प्रकार से जब पाठ अध्ययन करने लगे, कुछ दिनों के बाद महाप्रभु लोकनाथ को लेकर पूर्व बंग फिर गए। कहाँ गए? पूर्व बंग। पाठ समाप्त करके पूर्व बंग गए। पूर्व बंग में महाप्रभु घूमने लगे और वहाँ बहुत उत्सव, महाप्रभु आए बंगदेश में, अपने घर पर भी लेकर गए लोकनाथ गोस्वामी। और महाप्रभु जब वहाँ कुछ दिन रहे तो साथ में लोकनाथ गोस्वामी साथ में रहे। लोकनाथ गोस्वामी जो महाप्रभु के पिता महा उपेंद्र मिश्र उनके घर पर गए, जो रघुनाथ भट्ट के जो पिता तपन मिश्र उनके घर पर गए। तो इस पर कुछ दिन व्यतीत करने के बाद महाप्रभु जब नवद्वीप लौट कर आ रहे थे तो उस समय तालखड़ी में लोकनाथ को रख कर आ गए। तालखड़ी बांग्लादेश उसी जगह में रखकर महाप्रभु अपने अकेला नवद्वीप में आ गए। तो आते ही महाप्रभु एकमात्र चिंतन कैसे ब्रज का उद्धार हो, कैसे ब्रज का, एक ही संकल्प ब्रज के बारे में सोच रहे, कैसे ब्रज। तो आज भी ब्रज की पहचान नहीं कुछ, सुधु मात्र दो चीज की पहचान, एक जमुना नदी और एक गिरिराज जी। और कुछ नहीं, आज हम लोग ब्रज के दर्शन कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा देन है लोकनाथ गोस्वामी प्रभु की। तो लोकनाथ गोस्वामी इस समय गौर गौर करके रोने लगे हैं, रोते थे कि कब गौरांग महाप्रभु से गौरांग से मैं उनके साथ रहूंगा। ये उनका मन में बहुत तीव्र इच्छा, इसलिए संसार के प्रति उदास, संसार में कोई उनका रुचि नहीं है। तो सोचते सोचते एक दिन संसार से छोड़ छाड़ के नवद्वीप आ गए। कहाँ आ गए? नवद्वीप आ गए। और नवद्वीप आते ही महाप्रभु को प्रणाम किए। महाप्रभु जैसे प्रणाम किए, दो तीन दिन रहे साथ में, तीन चार दिन रहे। चार दिन रहने के बाद महाप्रभु एक दिन कहे लोकनाथ से कि तुम्हारे से मेरा कुछ श्री कृष्ण प्रीति के लिए कुछ कार्य कराना है, कृष्ण के लिए कुछ कार्य माने कुछ सेवा कराना है। तो क्या मेरा द्वारा क्या सेवा हो सकता है? तो इसलिए महाप्रभु कहे आज नहीं कहेंगे, काल सुबह आना, काल बताऊंगा। लोकनाथ प्रभु से कहे कि काल तुम आना हमारे पास, अब मैं तुमको सुनाऊंगा। जैसे आए, रात भर नींद नहीं आया लोकनाथ गोस्वामी का कि मुझे क्या उपदेश करेंगे, क्या बताएंगे, क्या मेरे लिए क्या सेवा है। तो सुबह सुबह आकर प्रणाम किए और महाप्रभु कहे कि तुमको ब्रज वृंदावन जाना है, वृंदावन धाम जाना है, तुम मेरे साथ नहीं रहोगे। तो उनका तो यही इच्छा लेकर आए थे, घर संसार छोड़कर आए थे कि महाप्रभु के साथ अपना पूरा जीवन व्यतीत करेंगे। किंतु आज महाप्रभु चार दिन मात्र हुआ, पांच दिन भी नहीं हुआ कि आज मुझे महाप्रभु कह रहे कि तुमको ब्रज जाना है। तो उन्होंने बहुत वजूहत दिया कि नहीं प्रभु, मैं ब्रज को जानते भी नहीं, उसका वहाँ कोई मेरे द्वारा मतलब ये कर रहे थे कि महाप्रभु आपके साथ रहना है, मुझे कोई जाना नहीं है। तो महाप्रभु ने कहा कि कृष्ण के सबसे प्रिय स्थान है ब्रज, तुम ब्रज में जाओ। और जो लोग साधन करते, अपने लिए साधन करते, वो भक्त है, किंतु जो अपने हित के साथ साथ दूसरे का भी हित का सोचते वो श्रेष्ठ है। तुम ब्रज में जाओगे और साथ साथ ब्रज की जो पुनः निर्माण करोगे, सभी लोग दर्शन करेगा, इसे तुम्हारा तुमको कृपा मिलेगा। तो उस समय महाप्रभु ने यह भी कहा कि सिद्ध व्यक्ति अंतर दर्शन से वृंदावन को दर्शन करते हैं, अंतर दृष्टि से वृंदावन को दर्शन करते हैं। भौम वृंदावन के लिए, भक्त अभक्त दोनों के लिए। ये जो आज ब्रज को देख रहे हैं हम लोग, कोई भक्त हो चाहे अभक्त हो, सभी लोग दर्शन कर रहे हैं। किंतु जो सिद्ध पुरुष है वो तो हमेशा ब्रज रहे चाहे ना रहे, कुछ स्थली रहे ना रहे, वो उसका निरंतर दर्शन होता रहेगा। किंतु जो भक्त नहीं है, जो अभक्त है, उसका भी आज ब्रज का दर्शन हो रहा है। तो महाप्रभु कहे तुम भौम वृंदावन की स्थापना करो। तो महाप्रभु आखिरी में कहे अगर मेरी प्रसन्नता चाहो तो तुम ब्रज चले जाओ, मेरी प्रसन्नता। महाप्रभु अपनी प्रसन्नता की बात कही तो उसके बाद उनके मुंह में कोई शब्द नहीं रहा कि महाप्रभु इस शब्द को मैं कैसे काटे, क्योंकि इष्ट भगवत प्रसन्नता के लिए व इष्ट की प्रसन्नता के लिए इष्ट को भी त्याग कर सकते हैं। जैसे महाप्रभु लोकनाथ गोस्वामी के इष्ट है श्री चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि अगर मेरी प्रसन्नता, हमारी प्रसन्नता चाहे तो तुम ब्रज चले जाओ। तो महाप्रभु उस समय संकल्प कर लिया लोकनाथ गोस्वामी कि मुझे ब्रज जाना है, और कोई शब्द नहीं कि मेरी प्रसन्नता। महाप्रभु एक शब्द बार बार कहे, मेरी प्रसन्नता चाहो तो तुम ब्रज चले जाओ। तो जैसे जाने के लिए सभी सभा में सब पास हो गया कि लोकनाथ गोस्वामी, लोकनाथ प्रभु ब्रज यात्रा करेंगे। उस समय गदाधर पंडित के एक शिष्य भूगर्भ गोस्वामी ने कहा महाप्रभु से, उनका मन में बहुत दिन की इच्छा थी कि मुझे ब्रज दर्शन करना है, कोई मौका नहीं मिला। तो आज महाप्रभु से कहे कि महाप्रभु मैं भी लोकनाथ के साथ ब्रज जाना चाहते हैं। तो महाप्रभु बहुत खुश है कि कम से कम उनका एक सहयोगी मिल गया, कोई साथ में रहने वाला, कोई साथी मिल गया। तो महाप्रभु परमिशन दे, यदि दोनों जाए और दोनों जाकर ब्रज की खोज करें कहाँ क्या स्थली है। ये भी एक बात है कि लोकनाथ गोस्वामी ब्रज की महिमा जानते थे, ऐसे नहीं कि ब्रज की महिमा नहीं जानते। लोकनाथ गोस्वामी के मन में ये भावना थी कि इहलोक और परलोक दोनों को भी त्याग सकते महाप्रभु के लिए, इसीलिए उन्होंने ब्रज आने के लिए निषेध कर रहे थे कि मैं ब्रज आना नहीं। उसके बाद महाप्रभु जब उनको आदेश दे दिए कि ब्रज जाओ, तो उस समय साथ में कौन आने लगे? भूगर्भ गोस्वामी। भूगर्भ गोस्वामी जैसे साथ में आए और उस समय दोनों एकला 3 महीना आने में समय लगा। लोकनाथ गोस्वामी और भूगर्भ गोस्वामी आने में कितना दिन? 3 महीना। रास्ता में कभी फल मूल, कभी कंदमूल ऐसे खाकर, कभी उपवास, कभी पानी पीकर, किंतु हृदय में गौर गौर करके रोते थे। लोकनाथ गोस्वामी निरंतर उनका आंखों में आंसू और गौर की शब्द मुंह में, ये दो चीज रहा। तो इस प्रकार से जब ब्रज आए, ब्रज में आकर मथुरा में कुछ दिन रहे, कुछ दिन रहने के बाद फिर वृंदावन में वनों वनों में घूमने लगे। उस समय वृंदावन घना जंगल था, एक जगह से एक जगह जा नहीं सकते, जंगली जानवरों से भरा था, डाकुओं का अड्डा था, बिल्कुल जान की खतरा बहुत, मतलब कहीं पे जाते वहां कोई ऐसे मनुष्य नहीं कि किसी से पूछे कि कोई यहाँ स्थली कौन सी स्थली है, यहाँ क्या नाम है, कुछ पता नहीं किसी को। आदिवासी कुछ जात सब लोग रहते थे यहाँ, किन्तु किसी को पता नहीं ये ब्रज के कहाँ क्या स्थली है, क्या नाम है, कुछ पता नहीं। जाके प्रार्थना करते थे, रोते थे, हे वृंदा देवी, हे राशेश्वरी, अब मुझे कहाँ क्या स्थली है, मुझे दर्शन कराए। तो वो सब सपनों में, जागरण में दर्शन होता था। कहीं पे जाते थोड़ा सा कुछ पता चलते, और हाथ में वराह पुराण था उनका, हाथ में वराह पुराण और डान हाथ में कुछ लिखोनी वस्तु बाकी पत्थर पर लिख कर वहीं पे गाड़ देते थे, और कुछ आदिवासी जो आसपास जो लोग होते उसके द्वारा कुछ निर्माण कार्य भी कराते, किंतु पूरा पूरा नहीं हो पाते, जितना हो सके करके नाम चिन्हित करते, इस स्थली का ये नाम है। तो नारायण भट्ट गोस्वामी ब्रज भक्ति विलास में लिखे है कि लोकनाथ गोस्वामी और भूगर्भ गोस्वामी अकेले 333 तीर्थ स्थलियों का निर्माण किए। 333 जितने वन हैं, उपवन हैं, ये सब मिला के 333 स्थलियों को निर्माण किए। तो फिर उस समय जब निर्माण कार्य होने लगे, तो महाप्रभु धीरे धीरे से लोकनाथ गोस्वामी एक दिन छत्र वन के पास उमराव ग्राम है, उमराव कभी जाएंगे, बड़ा सुंदर दिव्य स्थली है। तो एक दिन वहाँ भजन कर रहे थे, नाम जप कर रहे थे, एक तमाल वृक्ष आज भी है, तमाल वृक्ष के नीचे भजन कर रहे थे। उस समय उनका मन में बड़ी इच्छा कि मैंने बहुत कुछ ब्रज में, ब्रज का भी आस्वादन किए और कुछ भजन साधन भी करते, मेरी मन में इच्छा है कोई एक ठाकुर से भगवान के विग्रह मिल जाए, उनका हाथों में सेवा करेंगे, कुंज पाता लता पाता उससे श्रृंगार करेंगे। जस्ट सोच रहे थे कोई विग्रह मुझे प्राप्त हो। जैसे ही मैंने सोचे, उस समय एक बालक मैंने वृद्ध के रूप में आए और वृद्ध के रूप में आकर कहे कि बाबा, मेरे पास ठाकुर जी है, मुझे अभी सेवा करने की क्षमता नहीं है, आप इस विग्रह की सेवा करें। राधा विनोद विग्रह को दे दिए। तो देखते ही रह गए कि इतना सुंदर विग्रह, इतना मधुर मुस्कान, इतना स्वरूप मधुर, देखते देखते रोने लगे। तो कुछ समय के बाद देखने लगे जो बालक, जो वृद्ध ने देकर गया वो कहाँ है। जब बाहर जाकर देखे कि वो कहीं नहीं है। तो ठाकुर जी सपनादेश किए कि ये जो स्वरूप है ये खुद में ही आया आपके पास, आपकी उत्कंठा देखकर मैं खुद आया और इसी की सेवा करूं। तो फिर ठाकुर जी ने कहा कि मुझे बहुत भूख लगी, वहाँ किशोरी कुंड है, किशोरी कुंड से मैं बहुत दिन से छिपा था, वहीं से मैं खुद आया अपने पास, आपके पास, आप मेरी सेवा करें। और एक बात कि मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ भोजन कराइए सबसे पहले। तो वही भी जो उपलब्ध था, कुछ आटा चना जो भी है, बॉयल करके साग पात जो भी था, ठाकुर जी का भोग धराया, ठाकुर जी पाए। और इसके पहले एक घटना घटी लोकनाथ गोस्वामी जीवन में, जब महा लोकनाथ गोस्वामी ब्रज में घूमने लगे, तो लोकनाथ गोस्वामी उनको संवाद मिला कि महापुरुष संन्यास लेकर श्री कृष्ण चैतन्य नाम से अभी पुरी में रह रहे हैं, और महापुरुष पुरी से दक्षिण भारत गमन में भी चले गए। तो मस्तक मुंडी थे, जो घुंघराले बाल वो सब मन में कटवा दिया, मतलब सेव कर दिया, और महाप्रभु अभी संन्यास लेकर पूरी होते हुए कहाँ गए? दक्षिण भारत। तो उनका मन में इच्छा कि एक बार महाप्रभु और एक बार दर्शन कर ले, तो वृंदावन से वो कहाँ गए? दक्षिण भारत। लोकनाथ गोस्वामी और भूगर्भ गोस्वामी दोनों कहाँ गए? दक्षिण भारत। जैसे दक्षिण भारत में गए कि बहुत बड़ा स्थान है, कहाँ ढूंढे कहाँ खोजे, तो खोजते खोजते जब वहां भी गए, कुछ दिन रहने के बाद सुने कि महाप्रभु पुरी चले गए। तो वो फिर वहां से पुरी आए, जब पुरी आए तो कहे कि महाप्रभु वृंदावन चले गए। तो फिर वो वृंदावन आए, वृंदावन आने के बाद कहे कि महाप्रभु पुरी से काशी चले गए। तो उनका मन में बहुत दुख, फिर काशी जाने के प्रोग्राम बना रहे थे कि काशी में मुझे जाना है, महाप्रभु दर्शन करना है। किंतु महाप्रभु सपना देश किए कि लोकनाथ तुमको कोई जाना नहीं, तुम जब चिंतन करोगे मैं वही तुमको दर्शन देंगे। तो इस प्रकार से लोकनाथ का जो पहले दर्शन हुआ था, दोबारा दर्शन महाप्रभु का नहीं हुआ। वो जो दर्शन, पहले दर्शन, वो दर्शन दोबारा और नहीं हुआ। फिर इस जो राधा विनोद को भोग धराया बड़ा सुंदर से, हाँ, फिर महाप्रभु रूप और सनातन दोनों को भेजे। कहाँ भेजे? ब्रज में, कि जाओ ब्रज के, ब्रज में साथ में रहकर तीर्थ का उद्धार करो, जो लुप्त तीर्थ उसका उद्धार करो। तो जैसे ही रूप सनातन आए, रूप सनातन आने के बाद लोकनाथ ने कहा कि सब स्थलियों का चिन्हित कर दिया कि इतना तक मैंने किया, अभी तुम इसको संभालो। लोकनाथ गोस्वामी सौंप दिया किसको? रूप सनातन को। रूप सनातन अभी देखभाल करने लगे और कहे कि जो भी कुछ जरूरत है मुझे बताना, मैं सहायता करूंगा, किंतु पूर्ण रूप से और दृढ़भाग नहीं कर पाऊंगा। तो अभी रूप और सनातन दोनों देखने लगे। देखने के बाद रूप सनातन सब जगह घूमने लगे, देखने लगे, और धीरे धीरे से एक दिन और एक घटना देखिए। जब भोग लगा रहे थे, जब राधा विनोद की भोग का टाइम, दोपहर का टाइम, एक दिन लोकनाथ गोस्वामी अपने साधना में थे, कुछ भोग नहीं बना रहे थे। 12 बज गया फिर भी भोग नहीं बन रहा था। तो उनका जो सेवक था, देखे कि बहुत समय हो गया अभी तक भोग बन नहीं रहे, तो उन्होंने सोचा कि बुला के लाओ, न कि क्या करो, सोच नहीं पा रहे थे। तो उस समय राधा विनोद देखे कि ये भक्त लोकनाथ हमारी चिंतन कर रहे थे, इनके चिंतन में बाधा ना हो, तो इसलिए स्वयं लोकनाथ का रूप धारण करके स्वयं खुद रसोई बनाने लगे, रसोई करने लगे। जब रसोई पूरा हो गया, जब सेवक देखने लगे, पुजारी घर में जहाँ ठाकुर जी है वहां देखे कि लोकनाथ अपना ध्यान में मग्न है, उनका ध्यान अभी टूटा नहीं, तो किसी प्रकार से उनका आँख खुले। फिर देखे अरे बहुत टाइम हो गया, भोजन बनाना है, भगवान के लिए भोग बनाना है। तो जब दौड़ कर आए, देखे पूरा तैयार है। बोले कौन बनाया? तो शिष्य ने कहा, जो सेवक था, सेवक ने कहा कि आप अंदर थे और यहाँ भी लोकनाथ जो आप स्वरूप में हैं, यहाँ भी आप भजन भोजन बना रहे थे, ये तो मैंने दो स्वरूप देखा आपको आज। आप अंदर भजन भी कर रहे हैं और बाहर खुद अपना हाथ से भोजन भी ठाकुर जी के लिए भोग भी बना रहे थे, तो ये आपकी क्या लीला है। तो लोकनाथ गोस्वामी राधा विनोद से जाकर कहे कि आप बहुत विनोदी है, आप बहुत छली है, आप खुद जाके बनाना शुरू कर दिया। तो फिर कहे कि देखिए आप रोज पवाते, कभी कभी मुझे भी मौका मिलना चाहिए। अब खुद बनाया, ठाकुर जी पाया, बोले आज पा के बताना कैसे बनाया मैंने। तो एक घटना घटी। फिर जब लोकनाथ गोस्वामी के पास रूप सनातन आए और तीर्थों का कार्य सौंप दिए, सौंपने के बाद एक एक आचार्य का अंतर्धान होने लगा। एक एक आचार्य का श्रीमन महाप्रभु अंतर्धान। फिर देखिए ये भी एक घटना है, जब ब्रज में लोकनाथ गोस्वामी पूर्व में दो आए थे, एक अद्वैत प्रभु और नित्यानंद प्रभु, आकर कुछ स्थलियों का दर्शन तो किए किंतु रहे नहीं, कुछ दिनों के बाद चले गए, गौड़ देश चले गए। किंतु लोकनाथ गोस्वामी भूगर्भ गोस्वामी ये परमानेंट रहे, यहाँ स्थायी रूप से रहे। रहने के बाद कुछ दिनों में अंतर्धान होना स्वाभाविक, महाप्रभु अंतर्धान हो गए, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत प्रभु और गोस्वामी में भी प्राय जैसे रघुनाथ भट्ट अंतर्धान हो गए महाप्रभु विरह में, हाँ 1514 में 1500 अंतर्धान हो गए। तो अंतर्धान होने के बाद चार लोग थे, एक जीव गोस्वामी, एक गोपाल भट्ट गोस्वामी और लोकनाथ गोस्वामी, जीव गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी और गोपाल भट्ट गोस्वामी, चार लोग थे, लोकनाथ, गोपाल भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी और जीव गोस्वामी, ये चार गोस्वामी थे। अभी जीव गोस्वामी पर पूरा भार, इतने ग्रंथ निर्माण के इसका प्रचार प्रसार कैसे हो, सब तो जाने लगे एक एक करके। उनका मन में बहुत चिंता कि भक्ति ग्रंथों का प्रचार कैसे हो। तो उस समय दोनों तो ठीक है, एक श्रीनिवास प्रभु और श्यामानंद प्रभु, दोनों तैयार है, शिक्षा शिक्षित है, किंतु और एक का प्रयोजन है जो नरोत्तम नाम है। नरोत्तम इस समय दीक्षा लेना चाहते किससे, लोकनाथ गोस्वामी से, और लोकनाथ गोस्वामी दृढ़ प्रतिज्ञा लेकर रखा था कि मैं किसी को दीक्षा नहीं दूंगा, दीक्षा नहीं देंगे, बिना दीक्षा से ब्रज से बाहर जाने का आदेश भी नहीं दे सकते, इसलिए कहे कि जाकर जीव गोस्वामी स्वयं जाके आग्रह किए कि प्रभु इस जो शिष्य, ये जो नरोत्तम है, ये नरोत्तम का बैकग्राउंड सुनाया कि एक राजा के संतान है, ये वैराग्य भाव से यहाँ रह रहे हैं और इनका बहुत निष्ठा है, इनको आप स्वीकार कीजिए। तो उन्होंने कहा कि मैंने व्रत लेकर रखा, मैं किसी को दीक्षा नहीं दूंगा, आप हमारी व्रत में बाधा ना डालें, हमारे जो मैंने व्रत लेकर रखा, संकल्प लेकर रखा, उसमें बाधा, आप किसी और से दीक्षा दिला दीजिए। किंतु नरोत्तम ऐसे ही एक मैंने भक्त रहे, दृढ़ भक्त, जो लोकनाथ प्रभु से अतिरिक्त किसी से मंत्र दीक्षा नहीं लेंगे। तो लोकनाथ गोस्वामी उस समय वृद्धावस्था में थे, केसी घाट के नजदीक जो कुंज है, जहाँ गोकुलानंद मंदिर अभी इस समय, वहां कुंज में लोकनाथ गोस्वामी रहते थे। तो नरोत्तम के स्वरूप है चंपक मंजरी, तो वहां रह रहे हैं और नरोत्तम दूर से, जैसे उनके पास भी नहीं जाते, उनसे बात भी नहीं करते और दूर से हरिनाम करते, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, बहुत मधुर स्वर से कीर्तन करते हुए परिक्रमा लगाते, रोज करते। और लोकनाथ गोस्वामी जो रात के समय शौच क्रिया में जाते थे, उस समय उस शौच क्रिया के पानी और मिट्टी रख देते, जहाँ शौच जाते थे मल को साफ करके दूर फेंक देते थे, उस जगह को साफ रखते थे। तो लोकनाथ गोस्वामी सोचने लगे, एक मेहतर काम कौन करते, ये निकृष्ट सेवा कौन करते, शायद कोई आदिवासी होगा, यहाँ जानते बूढ़ा बाबा है, कर नहीं पाते, खुद शायद वो लोग कर देते होंगे। तो एक दिन, एक साल बीत गया, लोकनाथ गोस्वामी लोकनाथ गोस्वामी देखने लगे। लोकनाथ गोस्वामी दूर से एक दिन एक पेड़ के नीचे बैठ के देखने लगे कौन करता है ये सेवा, ये मेहतर काम। तो कहे देखे कि एक बालक आया और इस काम को पूरा करके चला गया और झाड़ू से बार बार प्रणाम कर रहे, आंखों में आंसू बहा रहे कि कितने भाग्य इस झाड़ू का, क्या भाग्य है कि आज इस हमारे गुरु जी की सेवा में इसका उपयोग हो रहा है। बहुत फिर कहा कि कौन है, काल से इस सेवा नहीं करना, रोने लगे। फिर से नजदीक जाके प्रणाम किए, प्रणाम करते ही कि उन्होंने एक शब्द कहा नरोत्तम प्रभु ने कि आपने जो गुरु दीक्षा बिना कृष्ण प्राप्ति संभव नहीं है, अगर आप दीक्षा प्रदान नहीं करेंगे तो इस जीवन का कोई मूल्य ही नहीं है। तो उनका कुछ समय के बाद उनका मन थोड़ा सा विचलित हुआ कि ठीक है, काल श्रावणी पूर्णिमा में आ जाओ, आके तुमको दीक्षा देंगे। तो उस समय नरोत्तम के मन में बहुत आनंद आया कि इतने दिनों के बाद मुझे मंत्र मिलेगा। उनका आनंद में आंसू में धारा में बह गए कि आज गुरु की कृपा मुझे प्राप्त हुई। जब नरोत्तम को दीक्षा मिला, साथ में रहने लगे, अपने लोकनाथ प्रभु अपने चरण कमल शिष्य के सिर पर रखे, तो उस समय पूरा जो भाव है वो संचार हो गया नरोत्तम के शरीर में। तो नरोत्तम कुछ सेवा के लिए बाहर गए थे, कुछ सेवा के लिए कुछ समय के लिए बाहर गए, तो उस समय जीव गोस्वामी उपस्थित हो गए। कौन? जीव गोस्वामी। तो जीव गोस्वामी कहने लगे, प्रभु एक भक्ति ग्रंथ का प्रचार प्रसार कौन करेगा? अगर आप अनुमति प्रदान नहीं करेंगे तो ये जो हमारे रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी जितने ग्रंथ लिखे, ये ग्रंथ ऐसे ही रह जाएगा, प्रचार प्रसार नहीं होगा। आप नरोत्तम को हमारे पास दीजिए, हम इनको प्रचार सेवा में लगाएंगे। तो लोकनाथ गोस्वामी उसी समय उनको परमिशन दे दिया कि बेटा ऐसे नरोत्तम तुम्हारे पास, महाप्रभु के नाम धर्म प्रचार के लिए नरोत्तम को सौंप दिया जीव गोस्वामी के हाथ में। जैसे नरोत्तम आए, गुरु से प्रणाम किए, गुरु से कहे, गुरु कहे लोकनाथ गोस्वामी कहे नरोत्तम से, नरोत्तम आज से तुम नाम धर्म प्रचार के लिए गौड़ देश जाना है, जीव गोस्वामी के साथ सहायता करना है। तो उनको तो जैसे वज्रपात हो गया कि इतना दिनों के बाद गुरु का सान्निध्य मिला, थोड़ी सान्निध्य से जैसे आशा पूरा नहीं हुई। तो उन्होंने कहा कि प्रभु कैसे छोड़ के जाए, आपकी सेवा छोड़ के जाना भारी पड़ रहा है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, जो हम मुझे भी चार पांच दिन मात्र समय मिला था, महाप्रभु के संग का मात्र पांच दिन मिला था, तो तुमको भी जाना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि जब बार बार कहने लगे तो नरोत्तम प्रभु ने कहा कि आपका जो चरण पादुका है वो चरण पादुका मुझे दे दीजिए। और तो सबसे पहले बोले कि मैं जब गौड़ देश जाऊंगा, गौड़ देश से बीच बीच में आके दर्शन करके जाऊंगा, गौड़ देश तो ज्यादा दूर नहीं है, तो गौड़ देश से बीच बीच में आपका दर्शन करके जाऊंगा। तो नरोत्तम लोकनाथ गोस्वामी ने कहा और बिल्कुल नहीं आना, ये अंतिम दर्शन है, ये जो दर्शन है ये अंतिम दर्शन है। तो उन्होंने और भी व्यथित हो गए, दुखी हो गए, गुरु का आज अंतिम दर्शन। तो उन्होंने कहा कि गुरुदेव अपना जो चरण पादुका है वो चरण पादुका मुझे प्रदान कर दीजिए। तो चरण पादुका लेकर रोते हुए गौर नाम का प्रचार करने के लिए उन्होंने गए बंगाल। तो बंगाल में प्रचार प्रसार करने लगे। ये प्रतिज्ञा जो लोकनाथ गोस्वामी ने जो प्रतिज्ञा किए थे वो प्रतिज्ञा भी भंग कर दिए नरोत्तम, क्योंकि नरोत्तम साधारण नहीं थे, नरोत्तम थे राजा कृष्णचंद्र राजशाही के संतान, और उन्होंने एक कृष्णदास नामक भक्त से गौर कथा सुने थे, गौर कथा सुने थे, गौरांग महाप्रभु के बारे में सुनते ही उनका हृदय बेकुल हो गए कि इस जीवन राज भोग के लिए नहीं है, ये गौर प्राप्ति के लिए। उन्होंने सब छोड़ छाड़ के ब्रज आ गए। अब ब्रज में निष्किंचन भाव से रहने लगे, भाव रहते रहते लोकनाथ गोस्वामी का संस्पर्श मिला और उनका उनसे दीक्षा लेने की भावना की। तो ये जो नरोत्तम प्रभु है ये सब परिकर है, ये सब साधारण नहीं है, ये सब राधारणी की परिकर है, ये चंपक मंजरी है, चंपक मंजरी राधारणी की परिकर है। तो जहाँ जो है जैसे शिल प्रभुपाद कहाँ कहाँ अपने शिष्य को चुन चुन के लाए और प्रभुपाद जी अपने गुरु के सेवा में कृष्ण सेवा में, जैसे उड़ीसा से राधा गौर गोविंद स्वामी, बिहार से राधा गोविंद स्वामी, बंगाल से सारा दुनिया से एकदम चुन चुन कर, जैसे बिहार से महाराष्ट्र से लोकनाथ स्वामी एक एक जगह से अच्छे अच्छे माने प्रभुपाद परिकर को लाकर प्रभुपाद जी अपने सेवा में कृष्ण सेवा में नियोग किए। तो इस प्रकार से ये जो भक्त है लोकनाथ गोस्वामी ये बहुत दिव्य, और जब पुनर्जीवित कर दिए तो पूरा ब्रज सब लोग आने लगे और यहाँ भक्ति शास्त्र की चर्चा होने लगी और दिन दिन ब्रज की विकास होने लगा। और धीरे धीरे से उन्होंने दो भजन लिखे, एक भजन तो सुनाऊंगा उन्हें गुरु के बारे में नरोत्तम प्रभु आप, क्योंकि उनका इतना दयन था लोकनाथ गोस्वामी की अपने बारे में किसी ने कोई कुछ लिखा नहीं, चैतन्य चरितामृत में डायरेक्शन दिए कि क्या क्या लिखना है गौर के बारे में, किंतु अपने बारे में लिखने का निषेध किया, कोई किसी ग्रंथ में उनके बारे में एक भी शब्द लिखा नहीं है, ये उनका दयनता। हाँ तो लोकनाथ गोस्वामी अपने बारे में कोई कुछ लिखने मना किया, तो उन्होंने एक बड़ा सुंदर भजन लिखे, छोटे छोटे लिखा,
लोकनाथ प्रभु तुमे करो दया करो मोरे राधा कृष्ण चरणे जेनो सदा चित्त सुरे।
आप दोनों पया देखने जाके पढ़ना प्रार्थना, नरोत्तम देव के दो दो पुस्तकें लिखे, बहुत सारी पुस्तक है उसमें, एक प्रेम भक्ति चंद्रिका और प्रार्थना, प्रार्थना के 43 और 44 जो पद है ये नरोत्तम अपने गुरु लोकनाथ के बारे में लिखे हैं।
हा हा प्रभु लोकनाथ राखो पद दंदे कृपा दिष्टे चाहो जदि होइया आनंदे मनोवांछा सिद्धि तबे हौ पूर्ण तृष्ण हेताई चैतन्य मिले सेथा राधा कृष्ण तुमि ना करिले दया के करिबे यार मनेर बासना पूर्ण करो एइबार एतिन संसारे मोर आर के हो नाए कृपा करी निजे पद तले देहो देहो ठाए राधा कृष्ण लीला गुण गाऊ रात्रि दिने नरोत्तम बांछा पूर्ण नहे तु आविने।
दैनत सहकारे अपने गुरु से प्रार्थना, हे प्रभु आपके बिना मेरा कोई नहीं है, आप मुझे दया करें।
लोकनाथ प्रभु तुमि दया करो मोरे राधा कृष्ण चरणे जेन सदा चित्त स्फुरे तोमार सहिते थाके सखीर सहिते एतो बासना मोर सदाई उठे चित्ते सखीगण ज्येष्ठ जे हो ताहार चरणे मोरे समर्पिबे कबे सेवार कारणे तबे से होइबे मोर बांछित पूरण आनंदे से विबोद हर जुगल चरण सिरूप मंजरी सखी कृपा दृष्टि चाया तापी नरोत्तमे सिंची सेवा मृत दिया।
यहाँ मंजरी स्वरूप में सेवा की प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु कभी सखी वेश में राधा कृष्ण की सेवा करेंगे। तो सखी भाव जो है ये अंतस चिंतित रूप है, तो इसमें सेवा होती है, दो स्वरूप होता है वैष्णव का, दो स्वरूप, एक बाहरी स्वरूप एक अंतर स्वरूप, जिसमें छोटी सी रूप जिसमें 8 साल किसी का 10 मंजरी स्वरूप में 8 साल की 7 साल ऐसी अवस्था होती है, इसी अवस्था में रूप मंजरी लमंग मंजरी मंजुलाली रूप गोस्वामी रूप मंजरी कहेंगे कि ये जो नवीन सखी आई है इनको ये नूतन नवीन नई सखी आई है, तो राधा श्याम सुंदर कहेंगे कि इनकी तुम्हारे पास रखो, इनकी तुम्हारे सेवा में सेवा सिखाओ, इस प्रकार से गाइड करेंगे। ये सब छोटे छोटे जो सखी है रूप मंजरी के गाइडेंस में सेवा करती है। तो कहे कि तुम्हारे पास रखो, इनको सेवा सिखाओ, धीरे धीरे से सेवा में युक्त करो। इस प्रकार से आज लोकनाथ गोस्वामी प्रभुपाद के जो गोकुलानंद मंदिर है वही उनका नित्य निवास था। आखिरी समय बहुत दिन वहाँ रहे, भजन किए, तो किसी के पास समय है जाके वही स्थान में दर्शन करें और प्रार्थना करें कि आज जो ब्रज दर्शन हो रहा है आपकी कृपा से, आपकी जो जो मेहनत है, जो प्रचेष्टा, जो चेष्टा है, आज सब भौम वृंदावन में सभी लोग, भक्त अभक्त सभी लोग दर्शन कर रहे हैं, ये आपकी बड़ी बहुत बड़ी कृपा है हम सब पर। तो आप कृपा करें कि आपके श्री चरणों में मोती बनी रहे और गुरु गौरांग सेवा नित्य चलता रहे। इस प्रकार से प्रार्थना करें। और लोकनाथ गोस्वामी प्रभु बड़ी दयनीयता के जीवन जिए, किसी प्रकार से अपना नाम का कभी किसी ग्रंथ में देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि उनका निर्देश ही था कि कोई ग्रंथों में हमारा नाम ना छापे। गाइड करेंगे, चैतन्य चरितामृत को गाइड किया कि कहाँ क्या लिखना है, किस चरित्र को लिखना है, किंतु अपना चरित्र में, ग्रंथों में अपना नाम लिखने में निषेध किया। इसलिए उनका ये दैन्यता का बहुत बड़ा परिचय है। और महाप्रभु सबसे बड़ा प्रिय, महाप्रभु भक्तेर दैन्यता प्रधान तहा देखे प्रीतहन गौर भक्त, महाप्रभु भक्तेर वैराग्य प्रधान, वैराग्य इनमें वैराग्य भी बहुत था। लोकनाथ गोस्वामी सर्दी में बिस्टी में जो राधा विनोद को झोली में लेकर चलते थे, लोकनाथ गोस्वामी जो राधा विनोद जो ठाकुर जी थे, कोई कहते कि छोटा कुटिया बना देते, नहीं कुटिया स्वीकार नहीं है, कैसे रखेंगे, नहीं झोली बना के ये सामने रखते थे। ठाकुर जी बहुत प्रसन्न होते, हमने भक्तों के छाती में रहना ठाकुर जी का बहुत प्रसन्न है, तो छाती में लेके घूमते थे और सेवा में सहयोग भी दिया। राधा विनोद जी, ठाकुर जी जहाँ जहाँ जाते थे राधा विनोद जी कहते स्वयं कि यहाँ इस लीला हुई है, कि ठाकुर जी अपने लीला अगर नहीं समझाएंगे तो कौन समझाएगा। तो राधा विनोद जी, ठाकुर जी स्वयं निर्देश दिए इस स्थान में ये लीला हुई। तो इसीलिए स्थान जो झूली निर्माण करके, हाँ आज कोई खुद स्वयं बारिश में भीजते थे, बिस्टी में भीजते थे, कोई बारिश हो रही है तो उसमें स्वयं भीजते, और ठाकुर जी को पेड़ के जो कोटरा होते ना, पेड़ में एक छोटा सा ही होता है तो उसमें रख देते। आज भी ये विग्रह जयपुर में है, राधा विनोद जी की जो स्वयं जो ठाकुर जी है कहाँ है, जयपुर में है। तो इनके तो छवि अभी है यहाँ, स्वरूप स्वरूप रूप से सेवा ले पा हो रहा है, किंतु असल जो ठाकुर जी जयपुर में है। तो इस प्रकार से स्वयं दुख उठाते थे, ठाकुर जी को सुखी रखने का, सुखे रखने का प्रयास करते थे। तो ये भक्त की भावना, स्वयं कष्ट सहन करे किंतु अपने जो प्राण धन वो बहुत सुखे रहे, यही भक्त की इच्छा होनी चाहिए। शिल प्रभुपाद की, लोकनाथ गोस्वामी प्रभुपाद की, समवेत भक्त वृंद की, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।